نحمد المصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الوالد ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں بندوں کی دو حالتوں کا دو کیفیتوں کا ذکر فرمایا ہے. ان آیت کی روشنی میں بزرگان دین نے کچھ روشنی ڈالی ہے. اللہ سے زیادہ کون بندوں کی عادات کو جان سکتا ہے, حقیقت کو جان سکتا ہے. پہلی چیز تو جو اللہ نے فرمائی قرآن حکیم میں اپنے انعام کا تذکرہ فرمایا, وَإِذَا أَنْعَمْنَا سَيَتْ فرمایا کہ جب ہم بندوں پر اپنی نعمتیں دیتے ہیں, نعمتوں سے نوازتے ہیں, نعمتیں بخشتے ہیں, اس کیفیت کا حال بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کی کہ بندہ کیا کرتا ہے اس وقت. اللہ کے انعامات اور نعمتیں جو ہیں وہ چند تو ہیں نہیں, حقیقت تو یہ ہے کہ بندے کی تو سارا وجود ہی اللہ کی نعمت ہے. کہاں گن سکتے آدمی, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری نعمتوں کو شمار ہی کوئی نہیں. نعمتیں میں دوں گا انسان تو کس کس نعمت کا انسان ذکر کرے, سر سے لے کے پاؤں تک وجود پورا, زندگی پوری, ہر چیز جو اللہ کی نعمت ہے انسان پر. بتائیں لیکن یہ ہمارا جو سٹینڈرڈ بنا نعمت کا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہمیں اپنی ہماری مرضی سے دے دے, جو ہم چاہیں وہ خواہش پوری ہو جائے, وہ عطا کر دے تو پھر بہت اچھلتے ہیں, پھر کودتے ہیں واہ جی واہ بڑا اللہ نے بڑا فضل فرمایا, بڑا کرم فرمایا. حالانکہ یہ پتہ نہیں اس کا انجام ہوگا کیا. اگر نہیں دے رہا, اس چیز کو پورا نہیں کر رہا تو اس میں منہ بسورتے ہیں, باتیں مارتے ہیں, غم کو اظہار کرتے ہیں. تو یہی یہ نہیں ابھی تک سمجھا بندہ داخل ہے اپنے اس تعلق کے, اللہ تعالیٰ نہیں سمجھا انسان. ہاں یہ ہر انسان نہیں, ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں, نہ ماننے والوں کو چھوڑو, بیچاروں کو تو ذکر ہی کچھ نہیں. مرضی کے مطابق بس یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں جو مانگیں بس وہ ہو جائے اسی وقت. واہ جی واہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ کا کتنا کروں میں, بس اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ یاد آئیں گے, مسجد نبی یاد آئیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ بھی. اور وہ چیز پوری نہ ہو پھر دیکھیں, مانگا اس لڑکے سے اللہ لڑکا دینا, لڑکا دینا, لڑکی ہو جائے بس, نہ اللہ نہ ڈاکر رسول اللہ کا اعتقاد رہا, نہ وہ وظیفے جو جاری کیے تھے نہ وہ رہے, سب کے سب پاک. یہ تو رشتہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے دوستو, ایک دم موڈ آف ہو جاتا ہے. حالانکہ ایک بڑی بیسک سی چیز ہے, ایک باپ ہے یا ماں ہے, بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے اورنج کھانا ہے, کرتے نہیں بچے, कह नहीं दे रही उसको ऑरेंज, नहीं तुझे नहीं देना क्योंकि खट्टा है। उसको क्या पता खट्टा है, वो तो ऑरेंज खाना है, अम्मा मैंने ऑरेंज खाना, वो नहीं दे रही उसको, वो रो रहा है, चीख रहा है, जुलम हो रहा है। नहीं, क्यों, माँ को पता है मैं इसको ये ऑरेंज दूंगी, ये खट्टा है, इसका गला खराब होगा, इसके इससे ज़्यादा इंजेक्शन लगेंगे, दवाइयाँ खाएगा, बीमार होगा, उसको बचा रही है। लेकिन बच्चा जो है वो क्या जिद की जाए कि नहीं मैंने तो खाना है, और नहीं दे तो उसको उछल रहा है, कूद रहा है और थप्पड़ मार रहा है, मुझे दो। तो हम तो उस बच्चे से भी गए गुजरे हैं कि मेरे मौला से हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं दे रहा, इसलिए कि इसको पता ही नहीं क्या होगा क्या इसके साथ। अगर मैं इसको ये लड़का देता हूँ, तुझे क्या पता कि इस लड़का तेरे साथ फिर क्या काम करेगा, तू तो लड्डू बांट देगा थोड़ी देर के लिए, खुशियों के जहर कर देगा। तो हकीकत तो यह है कि अल्लाह सुबहाना का देना भी और ना देना भी दोनों चीज़ें बड़ी चीज़ हैं। तो जहाँ तक इनाम का ताल्लुक है अल्लाह ताला का, तो इनामों की तो कोई हद ही कोई नहीं अल्लाह ताला के इनाम, किस बंदे का ताल्लुक क्या होना चाहिए अल्लाह ताला से। तो फरमाते हैं जब मैं इनाम देता हूँ तो चलो जो इनाम हम उसी स्टैंड पर बात कर लेते हैं जिसको हम इनाम समझते हैं, अल्लाह ताला उसी स्टैंड से बात करें कि चलो ना मानो मेरे बाकी इनामात को, जो तुम्हारा स्टैंड है उससे बात करता हूँ, चलो भाई दुकान दे दी, मकान दे दिया, बीवी दे दे, बच्चे दे दे, गाड़ियाँ दे दी, खुशहाली दे दी, और जनाब को रेल पेल लग गई माशाल्लाह, पैसा भी आ रहा है, दुकानें भी चल रही हैं, एक दुकान थी दो हो गई तीन मकान। चलो ये तो दुनिया है ना, इसको तो मानते हैं, ये नहीं मानते हैं अल्लाह का नेमत अल्लाह तआला, ये तो मानते हो ना, इसके बाद भी तुम क्या करते हो, अल्लाह पाक कहते हैं आरदा सुभानअल्लाह कि जब ये इनाम भी मैं तुम्हें देता हूँ, इतने सब कुछ दिया, दुनिया की सब चीज़ देता हूँ, तो खुद करता क्या तुम आ रहा था, और तुम उसे मुंह मोड़ लेते हो, अल्लाह अकबर। नहीं जी कल से नमाज शुरू करेंगे, नहीं जी क्या करें, वहाँ जाना था जी, फला जी अकाउंटेंट आ गया जी, आज तो ये काम था जी हमारा, आज तो जी उस दुकान पर जाना था, आज तो उसका टेलीफोन आ गया जी, क्या करें, जाते जाते हम भूल गए। तो ये जो तुम जिसको तुम इनाम समझो मैं तुम्हें दे रहा, तुम फिर मुंह मोड़ लेता हूँ उससे, छुट्टी अल्लाह ताला से, किसी का काम का पता ही नहीं, फिर बदमाशी भी शुरू करते हैं साथ, हराम हलाल भी ख़त्म। फिर भाई है दुनिया में नहीं, अब से ईमान से पता, अल्लाह ताला तो हमारी नफ्सियात जानता ही नहीं जानता। आज ये बैठ रहे हैं ना, लॉटरी निकला नहीं किसी, कल उसने इमाम उतर जाएंगे, गाड़ी कट दी और जना उसका फैशन देखना, फिर दीवी कहेगी छोड़ो जी दुबई चलते हैं, आप हर वक्त अब पैसा जाया जा रहा है, फलाने जा रहा है, शुक्र है पैसा नहीं, इमामों तो पहने में हम लोगों ने गाड़ी तो रखी। तस्वर करने शिरती कह रहा हूँ, अगर पैसों में जेब में पैसे होते ना आपके, यहाँ कोई ना बैठा होता। वजह उसकी एक है कि अल्लाह ताला ने एक काम ये रखा है कि दुनिया के अंदर उसमें एक ऐसी कशिश रखती है अल्लाह ताला दुनिया में, कि जहां दुनिया होगी, दुनिया की मोहब्बत हुब्बे दुनिया, जहां दुनिया की मोहब्बत होगी वो अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो सकती। याद रखो एक फार्मूला, अल्लाह ने कह दिया कि दो ये कैसे हैं, सौकन है, सौकन समझते हैं यानी दो बीवियां, तो चार तक चले जाती हैं ना लोगों के, दो ही कर लें आप, कि दो सौकने जो होती हैं, दो बीवी हैं, मुहावरा ऐसे ही होगी कि एक घर में नहीं रह सकते। तो आपको तजुर्बा होगा, मुझे तो उसका भी तजुर्बा नहीं है, जिनको तजुर्बा वो बता सकते हैं कि एक घर में रखने की कोशिश की आपने, क्या हाल हुआ, वक्त से पहले डाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई, बीमारियां लग गई, क्यों जी दो थी। अभी तो गैर इंसाफी साथ क्या है, अनजस्टिस है, जस्टिस करने बैठे तो वो फिर तो फुर्सत ही ना मिला आदमी दो का हिसाब करने का, दो तुझे दिए थे दो रुपये इसको भी देने, तीन उसको दिए थे तीन उसको भी देने, बराबर हिसाब करने है, वरना तो बहुत बड़ी सजा है उसकी। तो शौक बस नफ्स, दो ही कर लें, दो कर लें, तीसरी कर लें, चौथी कर लें, चाह रहे हैं ये सुन। तो इसकी तो मिसाल ऐसी है कि जिस तरह दो औरतें चाहे कितनी आपदा ज्यादा आप लें, एक ही खानदान के लिए हैं, लेकिन उन्हें फिर क्या करना है, रहना नहीं साथ, धाड़ मदाड़ पटार चलती रहती है। तो यही मिसाल अल्लाह पाक ने दी है कि दुनिया और अल्लाह की मोहब्बत का जो ताल्लुक है, दिल एक है, मोहब्बत भी एक है, बस मोहब्बत करनी तो किससे, अल्लाह से। अब जो जिम्मेदारी दे दी है किसी शर्म दे दी है, औलाद बीवी बच्चे चाचा मामा ताया सब, ये मोहब्बत नहीं है, जिम्मेदारी समझे इसको। क्या समझे? मोहब्बत ना समझे। नहीं यार बीवी आ गई अब क्या है, इसलिए तो हकूक बना दिए हर चीज के। अगर हकूक को काट दें कहता करके दिखा मोहब्बत से तू सब कुछ क्या आरज़ू पूरा करता। बच्चे बीवी का मर्द पे कोई हक नहीं, औरत का मर्द पे हक नहीं, बस मोहब्बत से एक दूसरे को खाना बना खिलाएंगे, देखता हूँ कितने लोग लाएंगे। ये अल्लाह के दिए हुए अहकाम आती हैं, हकूक हैं जो हम चल रहे हैं। मोहब्बत तो फिर थोड़ी देर के लिए होती है ये थोड़ी देर ही चलती है बस, तो मजे तक की मोहब्बत है, फिर मोहब्बतें कहाँ, फिर तो खत्म, फिर तो किचन मास्टर हो जाता है सारा मज़, फिर तो वही चलती है जो किचन से बेलते हैं ना रोटी, वही सर पे पड़ता है आदमी की थोड़ी देर के बाद, जो उसकी लला थी बस, फिर वो जो उसका मजनू था सुभान अल्लाह, वो तो फिर दास्तान है अलिफ लाला शुरू हो जाती है। कहाँ की मोहब्बतें, कहाँ से किससे, जब तक शादी होती है इश्क मरा तो खजलें भी चल रही होती हैं, और जनाबे वाला शेर भी सबसे हसीन नजर आती है, काली घटाएं उसकी बादल बाल जो है उसके काली घटाएं नजर आती हैं, और गाल उसके सुर्ख गुलाब नजर आते हैं, और होंठ उसके पंखड़ी नजर आते हैं, और जब वो सामने हो गए तो मोहब्बत में गायब अल्हम्दुलिल्लाह, वही उसके बाल हाथ में होते हैं और वो उसके मुक्का मार होते हैं, वो उसके चमचम मार देते हैं। तो हकीकत ये अल्लाह का इतना बड़ा करम कि उसने अहकाम दे दिए और उसने राइट्स दे दिए आदमी के, उस राइट के तहत चलना ही पड़ता है, पसंद हो ना हो हक देने ही आपको बीवी, हक हो मोहब्बत हो ना हो बीवी ने बंदे को हक देने, क्यों कि वरना सजा है इसकी, है या ना ऐसे आप सोचो। तो ये जो है दो औरतें जो है ये तो क्या है, सुकून है भाई। तो इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत होगी दिल में या किसकी मोहब्बत होगी। तो ये जो कहता है कि दुनिया भी है मैं इबादत कर रहा हूं, दुनिया भी है मैं जिक्र भी कर रहा हूं, नहीं नहीं कभी हो सकता नहीं। वो जो दुनिया के साथ जिक्र कर रहा है मैं 100% करता हूँ, मराकबे के अंदर हम पैसे ही गिन रहे हैं, मराकबे में दो ही जा रहा है, बल्कि क्या कि टेलीफोन को देखते रहते हैं, लाइट जल्दी किसी के टेलीफोन तो नहीं आ गया, किसी के बिजनेस तो नहीं आ गया, किसी हो ही सकता, अल्लाह ने कानून बना दिया है अबे दुनिया। तो अच्छा फिर दुनिया हो क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, दुनिया की भी हकूक दी है कि जहां तक जरूरत को पूरा करना है उसको दुनिया रखो, उससे आगे बढ़े डूब गए फिर तो दुनिया, जब आगे बढ़े तो फिर भूल जाओ दुनिया की मोहब्बत मिलती। हाँ अल्लाह की मोहब्बत को रखना है, एक मोहब्बत को निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये कानून है कि जब इंसान अमीर बन जाता है जब मालदार, तो अल्लाह कहता है आना था इसने मुझसे मुंह मोड़ लिया, क्यों कि अब इसके अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई तो मेरी मोहब्बत कहाँ होगी इसके अंदर। सुभान अल्लाह, नेचर बता रहा अल्लाह इंसान की, मुझसे तो दूर हो गया उस शख्स, मेरे पास तो आ ही नहीं सकता, और फिर क्या है ना शुक्री ऐसी होती है ना मेरे उस दुनिया की मोहब्बत के अंदर मेरी मोहब्बत नहीं, नमाज तो मेरी मोहब्बत से पढ़ेगा, अहकाम तो मेरी मोहब्बत से अमल करेगा, कुरान की तिलावत तो मेरी मोहब्बत से करेगा, जब मेरी मोहब्बत रही नहीं तो फिर क्या रहा, कुछ भी नहीं उसके पास कहाँ करेगा। तो आ रहा था उस दुनिया के जो मैंने इनाम जिसको समझता था वो तो जहमत थी उसके लिए बहुत बड़ी, और उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। एक ही नीचे बताइए अल्लाह पाक ने इंसान की, और दूसरी फरमाई अल्लाह ताला की, देखिए इससे बड़ी मस्सहु दर्र, अब दूसरी नेचर बताया अल्लाह पाक की। बुजुर्गान ने बड़ी प्यारी बातें करते हैं कि दूसरी नेचर क्या बताई, क्या हमने अगर उसको तकलीफ में मुबतला कर दिया, धोई होती है ना हमारे साथ, परेशानी भी कर दिया, उसकी दुकानें भी खत्म, पैसे भी खत्म, बच्चे भी खुद हो गए, बीमारी लग गई, ये लग गई, फलान लग गई, समझे ना, दुनिया तरस खा रही है उस पर, मर गया जी, लुट गया, कुछ भी नहीं रहा जी, ये नहीं रहा, फलान नहीं रहा, ऐसे होता है ना। तो कहता है फिर जब ऐसी पोजिशन आती है तो वो क्या करता है उस वक्त, अल्लाह होगा वजरू दुआ, सुभान अल्लाह, कितना वक्त है, चलो यार ये वसीफा ले आओ, चलो यार सल्लल्लाहु अलैहि के पास चलते हैं, चलो यार उमरा कराते हैं, चलो यार मस्जिद में बैठ के दुआएं मांगते हैं, चलो खाना काबा में जाके मुर्तज़ों के सामने दुआ मांगेंगे, दुआ जरूर दुआ, दुआओं की तरफ चलता है, मस्जिद की तरफ भागता है, और थोड़े आर्टिफिशियल दाढ़ी भी रख लेता है कभी कभी जनाब, कभी हल्का सा कोई बुरख़ा नकाब भी पहन लेता है, तो तब चलती ना औरतें मर्दों के साथ, और जनाब घर के अंदर ख़त्म शुरू हो गए, सूरह यासीन हो रही है, फलां हो रही है जी, फलां को बुलाओ, ये फलाना को बुलाओ, पीर साहब हज़रत साहब, ये कुरान बता रहा है, ये करते हम नहीं करते भाई, सोचो ये है तुम्हारे तमाशा नहीं है, है ना, उस तकलीफ से पहले उसको देखो तो कोई परवाह नहीं, ये कुरान बता रहे हैं। कुछ भी नहीं सुख। और जहां तकलीफ आई नहीं, फिर देखो उसको दुआएं करते जनाब, उमरा करके जा रहा है, फला जैसे जा रहा है। अल्लाह को हकीम हजरत हकीम रहमतुल्लाह ने अजीब बातें की दोनों कैफियत पे। फरमाया जो पहली कैफियत जो है ना इंसान की, फरमाते बहुत जो दुनिया आ जाती है तो अल्लाह बोल देता है। फरमाए तो शर बतर है, सबसे बड़ा गायत दर्जे का शर है इंसान, सबसे बड़ी शैतानियत है। इस हालत में इंसान कोई है तो दुनिया के साथ तो अल्लाह को भूला हुआ है, इससे बड़ी शैतानियत कोई हो नहीं सकती। जो आदत उसका है निश्चय इसकी भविष्य है। तो फरमाए दूसरी जो हालत है, हम तो देखें दुआएं मांग रहे हैं, बड़ा नेक हो गया, फला हो गया, अल्लाह तो सारे कलुओं को जानता है। तो फरमाते हैं ये हज़रत हनीफ़ का, ये एक और बुजुर्ग का कौल आपको बता रहा है, तभी तफसीर नहीं है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने फरमाया, तसीर उस्मानी का ही मकल। वो फरमाते हैं कि भाई दूसरी चीज़ जो है हकीकत में हसन तो जी फरमाया, हकुन फरमाते हैं रहमतुल्लाह कि भाई दूसरी जो कैफियत है वो क्या है, बेसब्री, गायत दर्जे की बेसब्री। गायत कहते हैं एक्सट्रीम पे बेसब्री है, और गायत दर्जे की हब दुनिया कहते हैं अनहमा, कैसे अनहमा कहते हैं डूबा हुआ ये शख्स। हम तो कह रहे दुआएं करा रहे हैं जी, तो बहुत ना बहुत कुछ कर रहे हैं, अब तो चेंज हो गए जी, बड़ा तब्दील हो गया माशाल्लाह, क्या बात है जी। तो ये नहीं समझो इसको, बल्कि क्या है बिनतहा दर्जी का बेसब्री का सबूत दे रहा है, और ये सब एन हमा कैसे दुनिया के अंदर। और उन्होंने तो जो लिखा दूसरी चीज बड़ी प्यारी बात है, कहते हकीकत ही है इसकी कि ये जो दुआएं मांग रहा है, ये सिद्धों में पड़ा है, ये जो वजीफे खींच रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, ये सब हाथ उठे हुए हैं इसके, लेकिन दिल में अभी भी इसको उम्मीद नहीं है अल्लाह से, सुभान अल्लाह, अभी भी इसके अंदर वो यकीन नहीं आया कि अल्लाह ताला मुझे दे देगा। करता भी जा रहा है और सोचता है पता नहीं मिलना भी या नहीं मिलना, यार बड़ा मुश्किल लगता है, पता नहीं अल्लाह, यानी अल्लाह पे वो अभी भी यकीन नहीं है उसको। नहीं कैसी नीचे बता रहा है कुरान उसको, सुभान अल्लाह। तो दोनों कैफियत जो इंसान की, जो दुआएं वो मांग रहा है, सब कुछ जो कर रहा है, हकीकत किसके लिए मांग रहा है, तो अल्लाह तो सिर्फ जानता है। कहता है ये जो तुम देख रहे हो नेक हो, इन्हें बिल्कुल ना मानना कि ये जो इसलिए मांगे, इसकी जो पोजीशन इस वक्त जो खराब हुई हुई है ना, इससे जो मुसीबत में है ना, इसको हटाने के लिए लगा है कुछ, तो इसने अल्लाह को ये समझ लिया भगवान मूर्ति, उसने ये समझ लिया कि आगे चिराग रख दो उसके आगे तो बस भगवान राजी हो जाएगा, तो अल्लाह को हमने ये सोच लिया कि वज़ाइफ से मना लेंगे, अल्लाह तो बस सूरज यासीन पढ़ो ठीक हो जाएगा, बस एक चक्कर मारो खाना खाबे को तो सब मुश्किल दूर हो जाएंगी। यानी अल्लाह के साथ भी इंसान क्या कर रहा है, जहन में वो बिजनेस है ना उसके, डॉच दे रहे हैं ना उसमिल्लाह। ये हमारी कैफियत है या नहीं है, करके देख लें आप घरों के अंदर, आम चीज़ है। आज वहाँ ख़त्म हो रहा है जी, फला हो रहा है तो ये हो गया जी, इसको दिया जाएगा तो फला, अल्लाह तआला कहते हैं ये हकीकत में क्या है, इस तकलीफ की वजह से कर रहे हैं। हाँ सुभान अल्लाह, इसमें एक बड़ी प्यारी बात आती है, इसके दरमियान एक कैफियत है, अल्लाह इसके दरमियान एक कैफियत है। हाँ अगर इस मुसीबत में बंदा अल्लाह को पुकारने से पहले, इन वजीफों से पहले, इन तमाम चीजों से पहले, और वाकई उसको एहसास हो गया कि यार मैंने बहुत गलती की है, मैं तमाशे लगाता रहा जिंदगी के अंदर, अपने अल्लाह को भूला होता, इस एहसास के साथ अगर सबसे पहले वो अल्लाह से तोबा कर ले तो काम बन जाता है। ये असल कैफियत है, सुभान अल्लाह, सच्ची और पक्की तोबा कर ले, जाला मेरी तोबा है, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं तो बाकी ये काम कर चुका हूं, तो बाप जो मुसीबत पढ़नी तो तूने दे दी, लेकिन इस मुसीबत से मुझे फायदा यह हुआ कि मुझे तेरे करीब कर दिया, सुभान अल्लाह। कैफियत दोनों कितने तब्दील होगी, अल्लाह तेरी इस मुसीबत ने मुझे तेरे करीब कर दिया, अगर ये मुसीबत ना आती, ये परेशानी ना आती तो मैं तो तुझे भूला हुआ था, और वो तो बहुत बड़े अजाब थे भाई, बहुत बड़े अजाब थे, जिस तरफ मैं चला जाता तो कहीं मेरा हाल ही खराब हो जाता, तो ये छोटी सी तकलीफ देकर तूने एक बहुत बड़े अजाबों से मुझे बचा लिया, और जहन्नुम की चीज से मुझे निकाल लिया मेरा, कितना फर्क हो गया देखा आपने। तो सभी बुजुर्गों ने लिखा है कि दोनों कैफियत, ये सबसे बड़ी धोखा है इंसान के लिए, ये भी धोखा है और ये भी धोखा है, वो दुआएं दुआएं नहीं, वजीफे वजीफे नहीं, अल्लाह को इससे राजी कर सकते हो, अल्लाह को अगर राजी करना है मुसीबतों से निकलना है तो इन मुसीबतों को छोड़ दो अल्लाह पे, कुछ फिक्र नहीं, हमने क्या करना है अल्लाह से तौबा करनी है सच्ची, और सच्ची तौबा कैसी उस मुसीबत के बाद, अल्लाह सुभान व तआला, सच्ची तौबा तो ये होती है ना भाई, बस अल्लाह के हाथ में हाथ दे दिया माशाल्लाह, क्या सब जो तू कहेगा वो हम करेंगे, किसा खत्म। रात कहेगा तो रात समझेंगे, दिन कहेगा तो दिन समझेंगे, शाम कहेगा तो शाम समझेंगे। अब हम तेरे बंदे हैं, बंदगी चाहते हैं मेरा मौला, हमने तीसरी चीज सुनी ला सुबहाना। अब ये क्या हो जाएगा, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, परेशानियों की जो कैफियत वो निकल जाएगी अल्लाह के फजल से। सुबहान अल्लाह, क्या कैफियत हो जाएगी, बंदा अल्लाह का हो जाएगा। कैसे अल्लाह पाक ने इंसान के दो नीचों की मिसाल देके और कैसा फैसला कर दिया। तो नतीजा दोस्तों उसका ये निकला। अब हम अपना तजिया करें जरा, आंखें खोल के जो कहना चाहते, जो नुक्ता निकलता है इस पूरी आयात का, वो क्या निकलता है कि बंदा खुशी में हो या गम में हो, परेशानी में हो या ना परेशानी में हो, जिस हालत के अंदर, बीमारी में हो या सेहत के साथ हो, अमीर हो या गरीब हो, पहाड़ परेशानी के डूब जाएं या इनामात के ढेर लग जाएं, कारोबारों के ढेर लग जाएं, लेकिन कैफियत उसकी ये होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल ना। ये कह रहे हैं अल्लाह कि तेरा मेरा बंदगी का रिश्ता यह है कि तू मुझे भूले ना, बस फस्कुरु नहीं यस्कुरु फंसा मनफूसा, ये रिश्ता है अल्लाह ताला, यह है मेरी बंदगी कि तुझे इससे सोकार नहीं कि क्या हालात में तेरे पैदा कर रहा हूं, क्या चीज दे रहा हूं, क्या चीज तुझसे ले रहा हूं, ये तेरे जाब्ते में नहीं होनी चीज चाहिए, इस पर तुम्हें सोचना ही नहीं कुछ, मैंने तस्वर कर चीज को, बस तेरा काम यह है कि तुझे तो एक तरफ लगना चाहिए मेरे मौला, तू है और मैं हूं, तेरी याद है मेरे मौला। कितनी प्यारी कैफियत इंसान की बन जाती है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं, इसलिए अल्लाह जिक्र असकार करते हैं कि ऐसी कैफियत हमारे पैदा हो जाए मेरे मौला कि हम तुझे भूल ना पाए कभी भी, इस कदर तुझे याद रखें, इतना तुझे याद रखें, इतना डीप तेरे से ताल्लुक हो कि जब तू हकीकत हमें अपने पास बुला रहा हो तो हमारे जबान से तेरा ही नाम निकल रहा हो। बस यही ख्वाहिश थी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब अपने प्यारे एक साहबी को बताया कि मेरी ख्वाहिश तो यह कि मेरा हर उम्मती जो है, तभी तो निकली ये बात हदीस हम तक पहुंची है कि हर उम्मती मेरा ऐसा होना चाहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह से इतना जबरदस्त ताल्लुक होना चाहिए, इतना जबरदस्त ताल्लुक होना चाहिए कि मौत के वक्त भी जब कितनी सख्ती है नजाह का वक्त हो लेकिन जबान पर उसके अल्लाह का नाम ही निकलता रहे। करना चाहिए ना भाई जिक्र, ये नहीं करना चाहिए, देख अब ये तस्वीर वाला जिक्र थोड़ी है, जिक्र से कोई तभी तो चाट नहीं होनी चाहिए आदमी की, जिक्र से भागना तो नहीं चाहिए। हाँ एक बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आज की कैफियत है वो मुख्तलिफ होगी, कल उससे ज्यादा मुख्तलिफ होगी, जब इस पर इंसान जम जाता है ना, अस्थानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान अगर किस चीज को मुस्तकीम करना चाहते हैं ना, उसका तरीका यह है कि बस वो पहले वाली कैफियत को बर्दाश्त कर दे, दूसरे दिन अल्लाह ताला उसमें कुछ और बरकत डाल देते हैं, मजा आने लगता है, तीसरे दिन फिर और बरकत आने लगती है, तो जो पहली स्टेज से निकल जाता है बस फिर तो बेकल हो जाता है, उसको छोड़ ही नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तकामत उसमें आ जाती है। और फिर जब इतना अल्लाह को याद करने में ये इस्तकामत उसको आ जाए, पंक्चर हो जाता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बरकत उसमें खुद निकलना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर भाई आज हमने जिक्र शुरू करना है, जिस तरह नए आते हैं जिक्र सीखते हैं, एक तो कोई कल भी जिक्र सीखता ही नहीं, फैशन नहीं आज हमारे यहाँ कि दिल को भी जारी करें, ये फैशन नहीं हमारे यहाँ, बस तस्वीर पकड़ के बैठ जाते हैं। एक अल्लाह ने दी हुई तस्वीर को जारी कराओ किसी अल्लाह वाले से, हम जिन दोस्तों को, अपने औरतों को, मर्दों को, घर वालों को, बाप को, चाचों को, अगर इनसे मोहब्बत रखते हैं कि आओ भाई अल्लाह वाला है, उसका अपना कल्ब जारी करा लो, उससे किस्सा खत्म, नहीं शौक ही नहीं हमारा, रोक ही नहीं, शौक ही नहीं इस चीज़ का, किसी को भी फायदा होगा अभी ही फायदा होगा बताया। तो जैसे फर्ज किया आप किसी अल्लाह वाले के पास, अल्लाह ने आपको भेज दिया, इनाम दे दिया इतना बड़ा, तो उसने आपको तस्वीर दी, तो आप अपना वक्त देखेंगे, जाहिर है एक दिन तो खुराक लंबी नहीं पड़ेगी, आप अपन मर्जी करते आज बस हम पांच तस्वीर शुरू करते हैं अल्लाह की तस्वीर, तीन से शुरू करते हैं बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन करनी रोज है, कितनी करनी है, तीन तस्वीर अल्लाह 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 की जो हम करते हैं जबान से, चलो तीन से शुरू करते हैं, लेकिन करनी इस्तकामत के साथ, चिंत तो हर आदमी कर लेता दो मिनट में, ये नहीं कर लेता, और फिर उसमें ये भी कि वजू हो या ना हो, कुछ भी ना हो, बस बैठ जाए, बैठना जरूरत है। जैसे आप, मैंने काम पे जाना, मैं देखता हूँ तीन मिनट मेरे बाकी रहे, कोई बात नहीं, आप तीन तस्वीर करेंगे एक मिनट लगता है, सब टक 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 अल्लाह की दुआ मांगी चले गए, ذکر ہو گیا اللہ کے فضل سے. بس اس سے شروع کر دے آدمی کا. اور جو کہتا ہے نہیں پانچ سے, پانچ سے شروع کر دے آدمی, پانچ منٹ لگتے ہیں اس میں. بس پھر دیکھیں اس کا کرشمہ الحمدللہ ہوتا کیا ہے, اس کے انوارات کیسے ہوتے ہیں, اس کے فضائل کیا ہیں, اس کی برکات کیسے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بس یہ کہ سب سے پہلے میرا کام یہ ہوگا جو میرے شیخ نے بتایا وظیفہ, اس کے بعد پھر باقی کوئی وظیفے کروں گا, میں قرآن کی تلاوت کروں گا, پھر میں یہ کروں گا, میں فلاں کروں گا, سب بعد میں. پہلے یہ کہ یہ جو بتایا ہے میرا پانچ منٹ کا وظیفہ, میں اس کو پہلے پورا کر لوں. یہ سرکاری بات ہے, آفیشیل چیز ہے, اس کے بعد دوسری چیز پہ شروع کی جائے گی. کرنا چاہیے نا سب. جب ایسا آدمی کرتا ہے تو الحمدللہ وہ اتنا پابند ہو جاتا ہے اس چیز کا, بڑے بڑے پھر تو وہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے ایک ایک لاکھ کھینچ جاتا ہے. ایسا شروع کرتا ہے تین سے. اکثر دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں آدمی جو کہ سو پاؤنڈ سے بزنس شروع کرتا ہے, جا کے ٹھہرتا ہے, جہاں جب ریٹائر ہوتا ہے تو الحمد للہ دس پندرہ لاکھ کی اس کو تو پراپرٹی ہوتی ہے. ہوتی ہی نہیں ہوتی. میں نے جب بزنس شروع کیا میرے جیب میں سو پاؤنڈ تھے. کتنے تھے؟ ادھار تو میں لیتے نہیں تھا, نہ میں ادھار دیتا تھا کسی کو, نہ لیتا ہوں, وصول ہے. سو پاؤنڈ تھے. تو سب کہتے ہیں یہ سو پاؤنڈ سے بزنس کرے گا اس کا دماغ خراب ہے, وہ بھی انڈر سینٹر میں دکان چلائے گا سو پاؤنڈ سے. کیونکہ میرے حضرت کا حکم تھا جو اللہ والوں کی زبان سے بات نکلتی ہے اثر تو ضرور رکھتی ہے. میرے حضرت نے کہا تھا کہ ہاتھ سے کمانا ہے, اور جو میں جو کچھ میں نے کیا تھا وہ سارا دنیا تھا. جتنی ڈگری میرے پاس تھی, ایم ایس سی اور ایم ایس سی مینجمنٹ اور ہوٹل کیٹرنگ مینٹ, جو کچھ تھا میرے پاس وہ سب دنیا تھی. اب ایک طرف دنیا تھی اور ایک طرف میرے شیخ کا کال تھا. میں نے کہا دنیا چھوڑ دوں, اپنے شیخ کے کال پہ چلتا ہوں, بے شک بھوکا مر جاؤں. میں اپنے آپ بیتی بتا رہا ہوں, میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن دنیا کی طرف ہم نہیں جانا. میں نے کیوں نہ میں نے اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا. میں کوئی استقامت تو ہوں نا, کوئی ڈرامہ تو نہیں نا اللہ کے پاس جانا. میں کہا اب تو بات یہ کہ میں نے ایک اللہ والے کا ہاتھ پکڑا ہے, اب تو جو ہے کہ دنیا اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا تو وہ میرا فائدہ ہی ہوگا. بھوک ننگ پیاس ایک کمرہ, آپ کیا کیا بتاؤں آپ کو, داستانیں گزری, لیکن میں ہلا نہیں. میں کہا جو کچھ ہو جائے, مشکل سے سو پاؤنڈ تھے تو جناب سو پاؤنڈ سے کتنی کس طرح اللہ پاک نے اتنی بڑا دکان دے دیا سو پاؤنڈ جیب میں. اب اتنی بڑی دکان مجھے کوئی دے گیا, اب بیچ میں پاس سو پاؤنڈ, الحمدللہ وہ سو پاؤنڈ چیز اب ریٹائر ہو تو اللہ کے فضل سے اچھا خاصا گھر بھی کھا پی رہے ہیں ابھی تک. نہ کسی کے نہ کسی کے دینا, نہ کبھی ادھار دینا تھا, آرام سے ریٹائر ہوا, کسی کا لینا دینا کچھ نہیں. آؤ اس تک دنیا سلام کرتا, بلکہ کسی کا زیادہ آ گیا تو گھر جا کے دے دینا کہ یار جی تمہارا زیادہ پیسہ. بھائی جب ایک آدمی اللہ کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ پہ اعتبار بھی تو کر رہے ہیں. وہی نہ دعائیں مانگ رہے ہیں, یہ قرآن کہتا ہے وظیفے کر رہے ہیں, یاسین کر رہے ہیں, دل میں ابھی یقین نہیں رہا تعالیٰ کا اس کا. یہ بکواس کر رہا ہے, اس کو اپنی تکلیف کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سب کچھ کہ میری تکلیف دور ہو جائے, اس لیے اللہ والے کے پاس آئے. نظر میں یہی ہے, اس کو اللہ نہیں چاہیے. اللہ جانا چاہتے ہو تو اس کا تو طریقہ وہ دوسرا ہے. اتنے وظیفے کرنے کی کیا ضرورت ہے, جھکو اللہ کے اگر مانگ لو توبہ سبحان اللہ کام بن گیا. ہمیں کہ اللہ پاک کہتا نہیں کہ ایسے فرشتے ہیں جو آسمان پہ, اور اس کے قریب فرشتے اللہ کہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے معاف فرمائے ان کو. تو یہ ایک بڑی اچھی قرآن کیفیت تھی جو آج, کیونکہ آیت پڑھ رہا تھا میں قرآن میں, پڑھتے پڑھتے میں نے میں کہا چلو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو الحمدللہ. مجھے تو بڑا مزہ ہے اس آیت میں, اسٹارٹ یہیں سے ہی کیا تھا, پھر میں آگے پڑھا ہی نہیں پورا سپارہ. تو پھر میں سورہ حامیم سجدہ کی شاید آیت تھی, تو میں کہا بھائی اس پہ ٹھہر جاتا ہوں آج, پہلے اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں آج. بڑی اچھا الحمدللہ میسج تھا اس میں بہت پیارا, کیونکہ ہماری کیفیت یہی ہے نا, ہم ڈرامے باز ہیں, اللہ تعالیٰ بہت ڈرامے کرتا ہے. تو اللہ سے معافی مانگے, اللہ کا ہونا ہے ایک راستہ. ٹھیک ہے گناہ کیے ہیں, بدماشی کیے ہیں, مصیبت میں پھنسے ہیں, جس میں بھی پھنسے ہیں اللہ سنتا ہے, اللہ نکالتا ہے, اس سے بھی زیادہ دیتا ہے, جنت بھی دیتا ہے دنیا بھی دیتا ہے. لیکن پراپر طریقہ یہ نہیں دکوس لے کے یاسین کا ختم کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں. پراپر طریقہ یہ ہے جھک جاؤ اپنے رب کے آگے, تسلیم کر لو ہم گناہ گار ہیں, ہم بدماش ہیں, ہم نے گناہ کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ, اللہ پاک ہم کو سچا اور سیدھا راستہ اور سچی توبہ مرنے سے پہلے عطا فرما دے, ورنہ وہاں تو پھر راز کھولیں گے تو پھر بہت برا حال ہوگا انسان کا.